नया वर्ष हम सब स्वागत के साथ स्वीकार किए हैं। हर व्यक्ति नए साल में नए कपड़े पहनता है, सबसे मिलता है, कभी किसी कारण राग द्वेष या झगड़े पैदा हो गए हों तो दूर करता है। एक भारतीय संस्कृति की परंपरा रही है। हर व्यक्ति जीवन में ऊंचा उठना चाहता है, यह हमारा आपका स्वभाव है। हम नर हैं कि नारी हैं, लेकिन प्रकृति के स्वभाव से हम बहुत आगे जाना चाहते हैं, बहुत ऊंचे जाना चाहते हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने जो कहा है उसी का आधार लेकर के आप की संस्कृति और आज का विज्ञान दोनों मिलाकर आपके सामने हर व्यक्ति आसमान छू सकता है। और हम आसमान कैसे स्पर्श करें, ऊंचाई के शिखर पर कैसे पहुंचे, वह मार्ग आज नए साल में आप सबको विचार के द्वारा भेंट में प्रदान करूंगा। प्रथम चीज यह है, आप स्वीकार करें कि हम सब परमात्मा की संतान हैं। परमात्मा की संतान कभी कमजोर नहीं होती, इसलिए क्षण के लिए कैसी भी परिस्थिति आ जाए, परिस्थिति का आधार कर्म है, लेकिन आप वही के वही हैं। सुबह हमारी छाया बहुत लंबी होती है, दोपहर में छोटी हो जाती है, फिर बढ़ती है, फिर शाम को रात्रि में भी लीन हो जाती है। छाया बड़ी हुई, छोटी बनी, फिर बड़ी हुई और भी लीन हो गई। लेकिन आप तो वही के वही, आप कहाँ विलीन हुए? आप तो 6 फुट हैं 7 फुट हैं 5 हैं 8.5, आप तो वही रहे। चाहे छाया बड़ी थी, छोटी बनी, फिर बड़ी बनी या देर विलीन हो गई। आप अपने को पकड़िए, अपने को पहचानिए, उधार जिंदगी मत चलिए। कोई छाया देख के कहता है तुम बड़े हो गए, फिर कहता तुम छोटे हो गए। आज हमारे पास धन आया तो बड़े हो गए, पद आया तो बड़े हो गए, लेकिन आप तो वही को वही है। ये तो कर्म का सिद्धांत है जो बाद में मैं लूंगा, लेकिन छाया देख करके आप छोटे बड़े कैसे अपने आप को मान रहे हैं? आप तो आप हैं बस। तो सबसे पहले हमारे ऋषि मुनियों ने कहा, अपने को पहचानो, स्व को जानो, परमात्मा के अंश हो, जो जहां से आया है उसका गुण लेकर आया है। या विचार कीजिए आप, परमात्मा भी जब इस धरती पर आया तो कर्म के आधार पर उसे भी संघर्ष करना पड़ा। संघर्ष का सामना कौन करेगा? जो मन और तन से मजबूत रहे। हमारी जो विधि है वो तन और मन दोनों को मजबूत करने के लिए। मैं चाहता हूं कि मेरा हाथ ऊपर उठे, ये विचार अच्छा है, लेकिन मेरे हाथ में कमजोरी है, लकवा हो गया है, पैरालाइज्ड हो गया है, तो कितना अच्छा विचार है, ऊंचे नहीं कर सकते। हाथ को नीचे रखने में हमें कोई प्रयास की जरूरत नहीं है, कोई प्रार्थना करने की भी जरूरत नहीं है। हमारे बच्चे पढ़ते हैं, हम फर्स्ट क्लास कैसे पास हों, वह पूछने के लिए आप आते हैं मेरे पास, या पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, मंत्रोच्चार करते हैं। किसी बच्चे के मन में आया कि असफल होना है, अब कोई बच्चा आकर मेरे से पूछता है, स्वामी जी असफल होने का मार्ग बताओ। असफल होने का कोई मार्ग नहीं, आपकी कमजोरी आपको असफलता की ओर ले जाएगी, इसलिए किसी से पूछने की जरूरत नहीं। आप मंदिर में आते हैं, पाठ करते हैं, मेरे पास आते हैं मजबूत बनने के लिए, तन और मन से प्रबल बनने के लिए, ताकि जीवन में जो संघर्ष है उसमें से विजय प्राप्त करके हम सफलता प्राप्त करें। नदी में मैं कहता हूं प्रवेश करो, तो प्रवेश तो कमजोर भी करेगा, लेकिन कमजोर आदमी तैर नहीं सकता, डूब के मर जाएगा। आप बलवान हैं, आपको सिखाऊंगा और आप नदी पार करें। जगत वही है, जो बलवान है वो माता पिता गुरु के आशीर्वाद से, जगत में जो संघर्ष है, जैसे नदी में मगरमच्छ होता है, कछुआ होता है, लहरें होती हैं, लेकिन जब गुरु सिखा देता है तो सब पार करते, उस पार चलूंगा। ये जगत में भी मगरमच्छ भी है, हर तरह से लोग सताने वाले हैं, खाने वाले हैं, बर्बाद करने वाले हैं, आपका अपमान करने वाले हैं, कोई बहाना चाहिए उनको, मौका देखते हैं कि कब इसको उठाने की बात हो, ऊंची रही कैसे इसको गिराए। लेकिन फिर भी अगर रामायण देखें, क्या राम को अवतार बाद में मानिए, एक अच्छा व्यक्ति मानिए, रावण पढ़ा लिखा है लेकिन हमेशा अपमान करने की बात नहीं, क्षण क्षण पर पत्नी का हरण किया है, लेकिन उसको भी उन्होंने सहन किया और विजय प्राप्त किया। आज राम की पूजा होती है, रावण की नहीं। कौरवों की क्या बात है, जब विचार तो करो, आप जा देखिए कि दुनिया कैसी है, नजदीक वाले कैसे होते हैं, भले ही कहानी है। आज मनोविज्ञान मान रहा है भारत की जो कहानियां हैं संभव है काल्पनिक हो, लेकिन आए जीवित व्यक्ति हमारे आपके लिए आए वर्तमान, तुम्हें इन सब का सामना करना पड़ेगा, तभी विजय प्राप्त हो। पग पग पर करों ने समस्या पैदा की, आप जानते हैं किस तरह से छल कपट किया, सब घर के लोग हैं, नजदीक के लोग हैं, किस तरह से किया। तो राम का जो इतिहास है वो जगत का है, ये मनोविज्ञान बता दू, और कृष्ण का इतिहास जो है वो नजदीक का है। तो जगत में अच्छे बुरे दोनों, हनुमान जी हैं, अंगद हैं, नल नील हैं, ये सब अच्छे भाई, भरत है, शत्रुघ्न है, सीता जी हैं, ये सब अच्छे भाई जगत। ये सुपर्णखा है, ये राक्षसी है, ये रावण है, ये धोबी है, ऐसे भी लोग जगत में। तो आपका संबंध अगर जगत में है तो ऐसे लोग आपको मिलेंगे, रावण जैसे मिलेंगे, धोबी जैसे मिलेंगे, मथुरा जैसे मिलेंगे, ये निश्चित है। और आप घर में हैं, किसकी कहानी, मनोविज्ञान करता है, तो घर में ही रिश्ते में ही कोई शिशुपाल है, कोई दुर्योधन है, ये सब क्या है? ये मैं आपसे कहता हूं, आप घर में कितने अच्छे रहोगे या जगत में कितने अच्छे रहोगे? जगत में भी आप अच्छे अच्छे लोग मिलेंगे और बुरे भी मिलेंगे, ये जगत है। घर में भी कितने, घर मतलब कुटुंब, कुटुंब मतलब रिश्तेदार नातेदार सब। आप लोग भगवान शंकर की पूजा करते हो, लेकिन भगवान शंकर की पूजा का मनोवैज्ञानिक अर्थ क्या है आप जानते हैं? इसलिए मैंने कहा कि मैं विज्ञान का, मनोविज्ञान का भी सहारा लेकर आपके सामने बिछा सकता हूं। इतनी जबरदस्त शक्ति महादेव में है लेकिन महादेव का एक कुटुंब देखो, परिवार देखो, सिद्धि भी है, जबरदस्त सिद्धियां हैं, ब्रह्मांड को हिला दें। लेकिन जहां देखिए एक अच्छे आदमी की पहचान, आपकी पहचान, पूरे ब्रह्मांड को हिलाने वाला शंकर भोलेपन में दे दिया भस्मासुर का आशीर्वाद। आप भी कई बार भोलेपन में गलतियां कर देंगे, हम भी कर देते, आप भी कर। जहां जिसके सिर पर हाथ रखे वो भस्म हो जाए, इसका मैं मनोविज्ञान बताऊंगा। आज मनोविज्ञान हमारा ध्यान करके हमें बता रहा है, और कहानी में आप जानते हैं, जबरदस्त ब्रह्मांड को हिलाने वाला शंकर हिल गया अपने ही वरदान से, भागा। कहानी आप जानते हैं। मैं कैसे समझूं कि आपका वरदान सिद्ध हुआ? भस्मासुर कहता मैं आपके ही सिर पर हाथ रखूं, वरदान देने वाला भी भागा। अब थोड़ा सा यहां मनोविज्ञान बता दो, आज परिवार की बात हो कि पड़ोस की बात हो, मनोविज्ञान कहता है कुत्ते के बच्चे को ला करके दूध पिलाओ, आपको कभी नहीं काटेगा, आपकी रखवाली करेगा, रक्षा करेगा। लेकिन गरीब के बच्चे को लाओ दूध पिला के बड़ा करो तो सबसे पहले आपको ही काटेगा, दूसरे को नहीं। आज आदमी इतना खतरनाक हो गया है, 50% तो अपने बच्चे ही काट रहे हैं, दूसरों की बातें छोड़ी। ये मनोविज्ञान का हमने वरदान दिया, जा जिसके सिर पर हाथ रखेगा। दो तीन किस्से ऐसे बताऊं, नाम नहीं लूंगा, किस्से बताऊं कि रिक्शा चला करके पिता ने बच्चे को एक अफसर बनाया, और अफसर बनने पर पिता मिलने गया तो गांव का हो गया, पिता कहने में बड़ी शर्म लगी, कैसे दुनिया। आप भी सुने होंगे ऐसे किस्से, मैं तो जानता हूं। लेकिन अपना फर्ज अदा किया। अब देख लीजिए आप में जबरदस्त शक्ति है, लेकिन समझ के आपने वरदान नहीं दिया। आप मनीषानंद हाथ में चाकू दीजिए तो आप जानते हैं मनीषानंद सब्जी काटे के समर्थन काटे, और आपने जाने आदमी को दे दिया कि लो भाई समर्थन काटना, तो सफर छोड़ देगा, सब तो भाई को काटना सुन देगा। एक बात है, इसलिए जो लेन देन है उसके पीछे भी एक समझ और विवेक की बात है, ये सीखना है। इतनी शक्ति रखने वाला जो ब्रह्मांड को हिला दे, हिल कब गया कि समझ करके वरदान नहीं दिया, अर्थात समझ करके कर्म नहीं किया। तो आपसे भी यही कहूंगा कि आप राष्ट्रपति बन जाइए कि महामंडलेश्वर हो जाइए कि शंकराचार्य बन जाइए, अगर समझ के कदम नहीं उठाओगे तो वेद का एक मंत्र याद रख। और हमारे ऋषि मुनियों ने किसी को नहीं छोड़ा है, नायम आत्मा बल ने लंबिया, इसी मंत्र में सबकी बात आ गई, शंकराचार्य जी की भी, महात्मा की भी, महामंडलेश्वर की भी, धन की भी, पद की भी, सिद्धि की भी, सब आ गई। तुम्हारा कर्म अगर दुर्बल होगा, बल ही नहीं दुर्बल, तुम्हारा कर्म संस्कार के विरुद्ध होगा, कमजोर होगा, दुर्बल होगा, तो ये दुर्बलता तुम्हारा सत्यानाश करेगी। बाकी दुनिया में कोई ऐसा नहीं पैदा हुआ जो आपका सत्यानाश करे। ये आपकी दुर्बलता, आपको सुनकर क्रोध आया है, विज्ञान क्या कहता है, ये क्रोध भी आपकी दुर्बलता है। किसी को देख करके आप ईर्ष्या करते हैं, आपकी दुर्बलता है। दान आप दे रहे हैं जलमय राम, खीर पूरी आप खिला रहे हैं और जल कोई और ना है, तो वेद का एक मंत्र याद रखना, हमारी ईर्ष्या, हमारा क्रोध, हमारे अंदर बदले की भावना, ये हमारी दुर्बलताएं। और वेद कहता है इसमें से एक भी दुर्बलता आ गई तो ये दुर्बलता आपका सत्यानाश करेगी, आप में के जीवन में निर्माण कुछ होने वाला है, जो होगा वो भी चला जाएगा। अब इसी में लालच भी आ जाती है, मर्यादा को उल्लंघन आ जाता है, सब कुछ आता है दुर्बलता का। जाओ दुर्बलता की बात होता है, बुरा न मानिएगा, आज मनोविज्ञान का था, भारत को समझो समझो। मैं महात्मा हूं, मैं बांधी भीख नहीं लेता, मैं तुम्हारा अतिथि हूं। अतिथि नाराज होता है तो उसका सत्यानाश होता है। सीता जी घबरा गई। अब यहीं पर मनोविज्ञान की बात बताओ, या सीखिए समझिए सीता की बात नहीं, हमारी और आपकी बात। कोई बहुत बड़ा सिद्ध है, बड़ी शक्ति है, लेकिन आपकी सरलता में दुर्बलता पैदा कर रहा है, तो आज सत्यानाश हो जाएगा। आप बताइए, मनोविज्ञान कहता है कि मेहमान अतिथि सत्यानाश करने के लिए आते हैं। अरे हमसे गलती हो जाए तो क्षमा करना चाहिए, उसकी जगह नहीं बोलना चाहिए तेरा आए। मनोविज्ञान समझिए, चाहे महात्मा जी हो कि शंकराचार्य हो कि अतिथि हो, अगर हमारे लिए कोई अशुभ विचार करता है तो वो अपनी मर्यादा में नहीं है। और फिर आ गया कि जो अपनी मर्यादा में नहीं है उसका आशीर्वाद भी नहीं लगेगा और शराब भी। आप घबरा क्यों गए? नकली कलेक्टर का कुछ चलेगा? कोई आ गया कलेक्टर बनकर देश में नकली चलेगा कुछ? लेकिन आप तो बस झूठा दे के घबरा गए और सरलता लाभ लाओ 2 लाख रुपया। सुना है कि तो ब्लैक की मनी कमाता है, जब कमाने गया तो साथ गया। और आपकी वो दुर्बलता, हाँ डीएसपी है नकली है, वो तो एक मनोवैज्ञानिक ढंग से प्रहार किया और आप नहीं समझ पाए। तो कई जगह लोग दिए हैं नकलियों को दिए। एक बात करता हूँ, अब ये पुलिस की बात बता दो, प्रणाम करने कोई आए हाथ में ठीक है, लेकिन अगर कोई घर में आए तो बिना वारंट के कारण आपके घर नहीं घुस सकता, नहीं उल्टा केस पर उसको आप जेल में भेज सकते। मैं कई बार ट्रेन में जाता हूँ, सफेद आजकल चेकिंग सफेद में होती, तो सबसे पहले आइडेंटिटी कार्ड लेंगे। कह स्वामी जी आप पढ़े लिखे लगते हैं, आइडेंटिटी कार्ड घर में भूल गया, पहले आइडेंटिटी कार्ड लाओ, पहले मुझे तो पता चले कि तू डाकू है कि टीटी है। नियम अगर देखिए तो सबके मर्यादा है, पुलिस भी आए तो उसका भी आइडेंटिटी कार्ड, आप पहचानते हैं तो ठीक है। बाकी आपके घर में कोई अगर आपको नियम सुनाओ, चलो है मैं हूँ, मेरा कोई चेला यहाँ है, मान लो गलती हो गई तो एक नियम है कि पुलिस पहले कहे और दिखाए कि किसको करना है, ऐसा नहीं कि सबको उठा करके। लेकिन हम लोग क्या इतने सरल हैं कि पुलिस देखते ही डर गए? डरे क्यों? कोई गलती किया होगा तब तो, मैं तो नहीं था, आप क्यों डरते हैं? कोई बात क्या, उसी डर के मारे उसको लग जाता कि कुछ गड़बड़ है, तभी तो डर आएगा। ले लो रामायण, मनोविज्ञान। शंकर कहते हैं हे लंकेश, जब तू चलता था तो जमीन कांपती थी, कहे हाँ, तो जब सीता की तरफ जा रहा था कौन तुझे डरा रहा था, क्यों कांप रहा था? मैं पड़ोसी कौन कर, जब तू चलता था तो जमीन कांपती थी, लेकिन जब सीता की तरफ जा रहा बिल्ली की तरफ, तू क्यों कांप रहा? यही बात वैज्ञानिक पकड़े हैं कि मेरा कर्म मुझे डराता है, बाकी दुनिया में कोई डराने वाला मैं डर रहा हूँ खुद अपने कर्म से। है किसी की ताकत जो हमें आपको झुका दे? यहाँ सब अच्छे अच्छे लोग बैठे, आप आते हो, कल मेरे से भी गलती हो जाए ना, तो उस दिन डीएसपी जब आएगा ना चंद्रेश, तो कहे महाराज जी आप बहुत अच्छे थे, अब हैं नहीं, हथकड़ी लगाने हैं। एक बात करता स्वीकार करना पड़ेगा बात। तो मेरे प्रिय आत्मन, मैं शंकर की बात लिया था कि पूरा ब्रह्मांड हिलाने वाला भी बुरा नहीं है, लेकिन बिना समझे बरदान दे दिया और परेशान हुआ। इसका अर्थ मनोवैज्ञानिक, आप कितने बड़े आदमी बन जाइए लेकिन समझ करके ही लेन देन लेना भी चाहिए और देना भी चाहिए। मैं ट्रेन की बात बता दो, बड़ा जी मेरी थैली है, मैं अभी आता हूँ, मैं थोड़ा पढ़ा लिखा हूँ, ये मेरी थैली है, मैं अभी आता हूँ, मैं समझ जाता हूँ, मैं कुछ नहीं बोलता, बाद में पुलिस आती, ये थैली किसकी है, मैं क्यों बोलूँ, क्योंकि मैं बोल देता रखो तो साक्षी बन जाते, स्वामी जी का रखो, भाई थैली किसने रखा, मैं भी नहीं बोलता, मेरे सामने कोई रख गया तो आसपास वाले, मैं आ कोई रख गया, अगर मैं कह देता रख दो तो मैं भी हिस्सेदार हूँ, उसमें अफीम होती है, साधु पास इसलिए रखता है कि टीटी और पुलिस जल्दी शक नहीं करती, लेकिन जब रतलाम के आगे पहुंच जाएंगे तो आकर के ले जाएंगे, उधर अफीम बहुत बिकती है, क्यों आप जिसको जानते थे उसके लिए हाँ क्यों बोल रहे, वहाँ रिवाल्वर रखे कि थैली रखे, मुझसे क्या बोले, आप कुछ ना बोलिए, और यही वेद कहता है बोलने के बाद तुम बादशाह भी बन सकते हो और अपराधी भी, इसलिए बहुत सोच समझ करके, ये हमारा बोल हमें राजा भी बना सकता है और हमें अपराधी भी, हमें गुलाम भी बना सकता है, इसलिए इसे बहुत तौल करते हैं, जिसको नहीं जानते केम छोभी करने की जरूरत नहीं, बस बतन करना है तो सही है, एक बात समझ लगे, नए वर्ष में आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ, हम किसी का विरोध नहीं करेंगे लेकिन हाथ या प्रणाम को समझ कर करेंगे, बस विरोध नहीं करना, कोई आता है पानी पिला दो, लेकिन कुछ कहता है पानी पिलाना आदर है लेकिन बिना समझे उसकी बात को मानना विश्वास है, और बिना समझे जो विश्वास करोगे तो धोखा धोखा, आदर करो विश्वास करो, ये समझने की बात है जानने की बात है, अब देख लीजिए और आगे जो आपको बता रहा हूं जगत क्या है, जगत में भी नाग है, अब परिवार देखिए, शंकर के गले में नाग है, जगत में भी शेर है शंकर के पास भी शेर है, जगत में मोर है शंकर के पास भी है, सब कुछ है, अब आप कहेंगे क्या कहना चाहते हैं स्वामी जी, चाहे आप जगत में रहें जो बताया कि बुरे लोगों की बात, चाहे आप अकेले रहें, अगर जगत में रहें तो अपने को तैयार करो, ये मुकाबला करना पड़ेगा, पलायनवादी न बने, और अपने घर में रहो तो घर में भी परिवार में भी रिश्तेदार में भी जो बताया उसमें किसी का स्वभाव नाग जैसा है, लिपटे तो गले से रहेंगे लेकिन स्वभाव नाग जैसा है, किसी का शेर जैसा है, किसी का गाय जैसा है, तो इनसे बचने के लिए क्या उपाय करना है, आंख बंद रखो मुंह बंद रखो, बस अभी सुबह एक बेटी ने बात किया, कोई बात की घर, मैंने कहा घर के झगड़े तीन कारण से होते हैं, बताया या तो आप से सुनते नहीं देखते नहीं बोलते नहीं या ईगो है सब बताया मान गए, या तो कोई बीच में धोबी मिल गया तो माता ने कहा हमारा धोबी है, या विचार कर, ये नए साल में एक विचार दे रहा हूं, आप नाक को नहीं भगा सकते न घर में से और न जगत में से, जो अस्थिर मार डालोगे दूसरा पहनाओ, मारने की क्या जरूरत है, बचने की बात कर रहा, कितने नाक मारोगे, यहाँ अच्छे अच्छे लोग बैठे हैं, केवल अपना परिचय देने के लिए नहीं बोल रहा हूं लेकिन जो बात है आप सबके प्रयास से, खास करके चंद्रेश के प्रयास से, बड़े अच्छे अच्छे लोग यहाँ आते हैं, इनका संबंध है परिचय आते हैं, जब लोगों को मालूम होता है कि यहाँ बड़े बड़े लोग आते हैं तो लोग आ जाते हैं, स्वामी जी मेरा काम करा दो, तो मैंने कहा आप संत के पास आए हैं कि एजेंट के पास आए, मैं किसी क्लास हो ना ऑफिसर के एजेंट हूँ कि संत हूँ, पहले क्यों नहीं आए, मुझे मोरारी मोरारी अपने अपने जो प्राइम मिनिस्टर हुए ना मोरारजी देसाई, मुझे एक मोरारजी देसाई की बात है, नाम मालूम लेकिन नहीं कहूँ, कोई मिलने गया जब प्रधानमंत्री बने, मोरारजी देसाई कहते हैं आपके शहर में मैं इलेक्शन के समय में आया था, आया था कि नहीं, कहा उस समय मिलने आए थे, कहा नहीं, सभा में मिलने आए थे, सभा में आए थे, कहा नहीं, तो आज आप मोरारजी देसाई से मिलने आए हैं कि प्राइम मिनिस्टर से, अब उसे बोला नहीं जाए क्योंकि वो पढ़ा लिखा था। अगर कहता है कि मुरार मुरारजी भाई देसाई से मिलने आया तो जब गांव में आया था क्यों नहीं मिलने आए, आज प्राइम मिनिस्टर आए तो नहीं बोले, उठ के चले गए। कितनी अच्छी बात मुरारजी देसाई ने किया, आप मुरारजी देसाई से नहीं मिलने आए हो, आप आए हो प्राइम मिनिस्टर। तो मैंने कहा मनीषानंद से साधुदास नहीं मिलने आया, शायद उस क्लास वन ऑफिसर के जन काम कराने के लिए आया, और एक काम मैं नहीं करता, जानते सब। कोई कहते कि कभी मैंने पत्र इनकार कर देता हूँ, आप आपका काम बनेगा तो एक दिन रोटी खिलाओगे, एक दिन आप भूखा रहूंगा नहीं कालिदास के यहाँ गोली जाके खा लूंगा, लेकिन एक गलत काम करके नहीं खाऊंगा। एक दिन के लिए पानी पी कर नदी के पानी पी लूंगा, एक बात करता हूँ। तो यहाँ विचार कीजिए, आप किसी को हटा नहीं सकते लेकिन अपने को संभालो, हमें गलत समझौता नहीं करना, यही समझाना भले कितना पंचे। तो जगत में जो अच्छे हैं उनकी चिंता मत करो, लेकिन जगत में जो नाग की तरह है, शेर की तरह है, गाय की चिंता मत करो, लेकिन जो शेर की तरह है, दूसरे खाना खून चूसने के लिए तैयार है, उनसे कैसे मिलो? कितना शेर मारो, कितने नाक को मारो, कितने को हटाओ, बस न सुनना है न देखना है न उनसे बोलना है, वो सब ठीक होकर आपके पास बैठ जाएंगे, इसलिए कोई आप पर आक्रमण नहीं। चुप हो जाओ, मत बोलो, एक समझने की बात है, जानने की बात है। तो जगत का जो है पद पर उसका मुकाबला करना पड़ेगा, वहां बैठना नहीं पड़ेगा, वहां तो शेर को मारना पड़ेगा, रावण को मारना पड़ेगा। लेकिन अगर स्वजनों परिवार में है तो कितने को नाराज करोगे, आप चुप हो जाओ, अपने आप समय हर चीज को आपके सामने प्रकट कर देगा, क्या सच है क्या झूठ है। तो नए साल में जगत के रावण से लड़ने के लिए तैयार रहो, जगत के शेर से लड़ने के लिए तैयार रहो, जो अच्छे हैं वो आपकी मदद करेंगे, स्वजनों में परिवार में गांव में जितनी कम आवाज निकालो कब बोलोगे, जितना कम देखोगे कब सुनोगे उतना ज्यादा सुखी सुखी। अब सवाल उठा विकास का, आज हमारी ताकत बेकार के कामों में कितनी जा रही है, मदद करने के लिए कोई तैयार नहीं, गिराने के लिए बहुत लोग तैयार, उसके लिए जो विचार आपको दे रहा हूं, कुछ ऐसी मन में कमजोरी ना आए कि आप दिख जाइए, मन को प्रबल बनाओ, जीवन में स्थिरता लाओ, मन की प्रबलता जीवन की स्थिरता, और ऐसा सिंचन करो कि ऊपर जाओ पतन ना हो। विज्ञान इसका उदाहरण देता है पेड़ पौधों का, ये हमारी जो समर्पण की भावना स्थिरता है प्रबलता, इसका उदाहरण विज्ञान पेड़ पौधों से दे रहा है। पहले अध्यात्म समझिए, समर्पण ऊंचे जाने के लिए समर्पित होना, समझ करके समर्पित होना, समझ के काम करना, समर्पण के बाद यह न लगे कि मैं दलदल में फंस गया, बिना सोचे समझे कोई इंद्रभवन बैठे हैं, मैं तारीफ की बात नहीं करता, कोई नाम वगैरह भी नहीं लेता, लेकिन कल अचानक 22 लोग आए, हमारे कमिश्नर साहब भी थे, वो कहते आपके यहाँ रहना है, मैं पूछा पहले कहाँ थे, अब देखिए जा सोचिए, पता नहीं मुझे गधेड़ा माना था क्या माना था। मैंने फोन किया, कहीं किसी आश्रम का नाम नहीं लेता, कोई लिया क्योंकि पता नहीं अंदर क्या है, इसलिए किसी का आश्रम नाम लेके बदनाम नहीं करता। मैंने एक आश्रम में फोन किया, कहा आ जाइए, और अभी आधे घंटे पहले कहा कि आप लोग निकल जाइए। आखिर मैं पढ़ा लिखा हूँ। मैंने कहा जब आपने फोन किया तो आपने कितने दिन रहने के लिए कहा था? नहीं ऐसा कुछ नहीं कहा। तो उन्होंने पूछा था आश्रम वाले कि आप कितने दिन रहोगे, कहा पूछा भी नहीं, तो सब मुझे गोलगप्पा लगा। 22 जन थे लेकिन हाथ जोड़ करके सर मिला के मैंने बंधन कर दिया। क्यों इंद्र बदल आपके साथ कमिश्नर साहब बैठे वो कैसी उल्टी सुलटी ऐसा ऐसा फिर क्या कहते हैं कि मैं तो फैमिली लेकर आया। मैंने कहा आजकल नकली पत्नियां भी मिलती ऐसा ना, आजकल कोर्ट में भी नकली करके असली का तलाक ले रहे हैं, ये प्रमाण नहीं है। मुझे आपकी बात में ही आप समझे कि नहीं, और आपसे यही कहूंगा हमारा वेद बार बार कहता है अगर अनजान व्यक्ति मिले तो पहले उसकी बातें सुनो, अपने तरफ से कुछ न करो, और बातों से अंदाज लग जाता है कि इसके इरादे क्या क्या। और अनजान आदमी जब आपकी बहुत प्रशंसा करे तो बहुत सावधान रखा, बहुत प्रशंसा करने वाला बिना सोचे समझाते लोग मेरे पास आपका नाम सुना आप बड़े सिद्ध हैं, मैं सुनता हूँ फिर मैं कहता हूँ दो भाई रोटी खा के 11 रुपया दूंगे चले ये प्रशंसा कितना आए और रोटी खाइए हो। अनजान आदमी से प्रशंसा क्यों कर रहा है? और आप प्रशंसा का जो पुल है ना उस पर चलने की जरूरत नहीं, पुल कहाँ होता है? नदी पर। और जब पुल ही नहीं है चलोगे तो कहाँ गिरोगे? नदी क्या है? दुख डूब के मर जाओगे। इसलिए आपसे भी कहूंगा अनजान आदमी आपकी प्रशंसा करे तो उसको रोटी खिला के विदा कर दो, उसको गले लगाने की नहीं तो गिर जाओ प्रशंसा है बात है सर। अभी कल की बात है बैठे प्रशंसा कुछ भी नहीं माना ही नहीं, हाथ जोड़ा मैंने कुछ और नहीं माना जा गए थे ये आपसे कहता नए वर्ष में कोई प्रशंसा करे तो प्रशंसा में डूबने की कोशिश न करें। अब एक चीज बताऊंगा आपको, जब बताइए तुझे मैं एक बहुत लॉजिक आपको दे रहा हूँ, बहुत ही लॉजिक दे रहा हूँ। अब इस लॉजिक को आप जरा हमेशा ख्याल रखना। नीति में कहा गया है, बड़े प्यार से कह रहा और इसको कुछ गलत ना मानिएगा, इसको समझिएगा। प्रशंसा अच्छी चीज है, प्रशंसा अच्छी चीज है। देखिए प्रेज जिसको बोलते हैं, प्रेज अच्छी चीज है, लेकिन जब जरूरत से ज्यादा प्रेज हो और हम समझते हैं तो वो फ्लैटरी बन जाती है। क्या बन जाती है? चापलूसी बोलते हो। तो हमारे यहाँ ऋषि मुनि कहते हैं प्रशंसा कोई करे अगर उसके लायक हो तो कोई चिंता नहीं, लेकिन उसके लायक नहीं हो तो समझ जाना चाहिए फ्लैटरी मतलब चापलूसी कर रहा है और इसमें तुम्हें धोखा दे करके सत्यानाश कर देगा। तो कोई प्रशंसा करे, जैसे मैं बताऊं अब मैं महामल्लेश्वर हूँ, अब कोई आके स्वामी जी आप अच्छे मत ठीक है, लेकिन कोई कहा स्वामी जी मैंने सुना है कि आपको तो सारे महामल्लेश्वरों के आप आचार्य हैं और मैं जानता हूँ कि मैं तो आचार्य के चरण के रज हूँ। अच्छा भाई ऐसी बात है आप ये मानते हैं कि अब मैं जानता हूँ कि मैं महामल्लेश्वर हूँ और प्रशंसा आचार्य बोला तो ये चापलूसी हो गई, ये फ्लैटरी हो गई और इस फ्लैटरी से आप सावधान। आपकी कोई आपको आप लखपति हो ठीक है, लेकिन कोई कहता है कि मैंने सुना आप करोड़पति हैं तो बताओ जानते हो आप अगर लखपति करोड़पति बनाना चाहता है तो फ्लैटरी क्या होगी जानते हैं? लखपति 101 रुपया देगा और आपको करोड़पति की प्रशंसा में ला कर 1000 देगा, तो उसे 1001 का मतलब है आप लखपति है करोड़पति हो। आप एक भिखारी भी फ्लैटरी कर चापलूसी कर आपका लड़का डॉक्टर बन जाए इंजीनियर बन जाए करोड़पति हो जाए फ्लैटरी है, लेकिन फ्लैटरी में प्रशंसा मान के उसको रोटी खिलाते थे। इसलिए फ्लैटरी जो है ना चापलूसी, और यही बात रावण ने कही। रावण से पूछा गया कि राजनीति का नियम है कि दुश्मन अपने प्रदेश में नहीं आना चाहिए, तूने क्यों आने दिया? कहा मेरे नजदीक वाले मुझे चापलूसी क्या प्रशंसा नहीं किया चापलूसी, इसको ठाकुर सुहाती बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ठाकुर सुहाती। को हिंदी अनुवाद है चापे, ये ठगों सुहातियों ने मतलब चापलूसी करने वाले क्या, अरे जिसकी माँ ने निकाल दिया, जो जंगल जंगल भटकता है, जिसके पास बानर भालू हैं, वो तेरा क्या बिगाड़ेगा, उसको आने दो, पुल बनाने दो, उसको खत्म करके उसी पुल से जाकर अयोध्या में राज करेंगे। वो कहता है ठाकुर सुहाती चापलूसी में मेरा सत्यानाश हो, चापलूसी में ही सत्यानाश हो गया, या विचार करो। तो इसलिए नए साल में हम प्रशंसा के लायक बने, हम अच्छे लोगों की प्रशंसा करें और हमारी भी कोई प्रशंसा करे, ठाकुर सुहाती न करे, ऐसा नहीं है, मतलब चापलूसी वाली फ्लैटरी वाली बात नहीं, परहेज वाली बात, हम अच्छे लोगों की इज्जत करें और हमारी भी अच्छे लोग इज्जत करें। एक जोक सुना दूं, बच्चों को बहुत पसंद आए, बच्चों को बहुत पसंद, बेटा मुझे भूख लगी है, घर में से जाओ कुछ लाओ। अरे तू 24 साल हट्टा कट्टा जवान है, तो इस तरह से तो पुलिस अफसर बन सकता है, जितना ऊंचा लंबा है। कहा ये तो थोड़ी सी हंसी की बात है, कहा हूं तो BA LL भी है, लेकिन नौकरी नहीं मिली तो पेट के लिए। कहे बेटा एक बात करो, आप उम्र कितनी है? आ तो एक जोक है, कहते मेरी उम्र भी 20-21 की है। कहा बेटा देखने में जोक है, समझिएगा, देखने में भी तू राजेश खन्ना लगता है, अभी क्या करता? कहा मैं बेकार हूँ। तो बेटा मैं भी बेकार, मैं रोटी मांगता हूँ और तू बाप से बेकार है खाता है, भिखारी तो दोनों है, मैं दुनिया से मांगता हूँ, तू बाप से मांग, बाकी तू भी राजेश खन्ना बन सकता। वो कहता ठीक, तू भी राजेश खन्ना बन सकता, और भाई हो सकता था, आप एक बात करता है। तो ये सब बातों से जहाँ हमें इज्जत लेनी है और इज्जत देनी, हमें प्रशंसा करनी है और हम भी लायक बने लोग हमारी प्रशंसा करें। तो अब देखिए, एक समर्पण, आप क्या बनना चाहते हैं, चाहे आध्यात्मिक बात हो कि व्यवहार की, आप विवेकानंद तरफ जाना चाहते हैं, रामतीर्थ की तरफ, शंकराचार्य की तरफ, स्वामी साजानंद की तरफ, किसकी तरफ, राष्ट्रपति की तरफ, प्रधानमंत्री की तरफ, किधर? और एक दूसरा भी पात्र है, रावण भी है, कंस भी है, आप क्या विचार किए, या विचार करो। तो समर्पण समझ के करो, कोई बुरा बनना नहीं चाहता, कोई छोटा बनना नहीं चाहता, सबके मन में ऊंचे उठने की जबरदस्त जिज्ञासा होती है, कुदरती है, फिर जीवन में स्थिरता लाओ, चाहे कुछ हो जाए, किसी का अपराध से भटको नहीं। आपने जो निर्णय लिया अगर बदल गए तो निर्णय क्या लिया, निर्णय लिया कृष्ण मेरा है, मेरा है, समय ने हिजड़े कपड़ा पहनाया, थाली मजवाई, समय ने घोड़े की रखवाली करवाई, घोड़े की रखवाली उस समय मूर्ख करते थे और नकुल सहदेव विद्वान थे, कोई लिखने पढ़ने काम नहीं मिला, भीम जो हाथी उठा के फेंकता था, थाली उठाने की बात मिली, जिसके हाथ में गांधी है, समय ने उसे समय है मतलब कर हिजे कपड़ा पहनना पड़ा, ऐसी परिस्थिति में भी इन पांडवों का मन किसी भी तरह की समय से विचलित, यह है समर्पण, यह है स्थिरता। आप सीता जी की बात लीजिए, किसी भी तरह उन्होंने राम पर कोई कलंक आरोप नहीं लगाया, मैं बात नहीं मानी, मर्यादा को उल्लंघन किया, इसलिए दुखी हूं। अब यही बात को विज्ञान कहता है, राम अर्थात ईश्वर की रचना में दुख नहीं है, या तो आप वडिलों की बात नहीं मानते, या तो अपनी मर्यादा के बाहर जाते हैं और खुद आप दुख को आमंत्रित करते हैं, बाकी दुनिया में कोई नहीं है जो आपको दुखी करते, बड़ों की बात नहीं मानते, वडिलों की, या अपनी मर्यादा के बाहर जाते हैं, कोई भी कारण, किसी भी कारण। तो शुरू में जो एक शब्द दिया था, नाय महात्मा बल्ले लंबे, या विचार कीजिए, अच्छे अच्छे लोग बैठे हैं, लेकिन किसी दुर्बलता का पहले का और आज का एक उदाहरण दे दो, बड़े प्यार से कह रहा हूं, वो तो लीला है, लेकिन आज का एक उदाहरण तो समझ, तुझे मृग की क्या जरूरत है? ये तो लीला है, इस लीला का जो आज का रूप बताऊंगा आप समझ जाएंगे। तुझे सोने के मृग की क्या जरूरत है? कहा जरूरत नहीं है, लेकिन 14 साल के बाद जब अवध वापस जाऊंगी तो विचित्रता जो हमने जंगल में देखी सहेलियों को लोगों को दिखाऊंगी। आप अध्यात्म रामायण पढ़िए, बड़ी सुंदर बात है। सीता जिस चीज की जरूरत नहीं दिखाने के लिए मांग करने में पतन हो जाता है। जिस चीज की जरूरत नहीं दुनिया को दिखाने में आदमी पतित हो जाता है। नाम नहीं लूंगा, एक आई जी पत्नी के कहने पर, यहां भी सीता पत्नी, जितने आधे लोग अफसर परेशान है हाथ जोड़ मेरी बेटी हो इसलिए पत्नी बहुत अच्छी मिलनी चाहिए, बहुत सोच समझ के लानी चाहिए, बुरा न मानिए। एक आई जी की पत्नी ने कहा कुछ डिमांड की, अब शाहजहां का समय तो था नहीं कि ताजमहल बनाए बेचारा, और उसी मांग में 5 करोड़ के चक्कर में पड़ा और आज आजीवन कारावास हो गया। क्यों कारावास हुआ? वहां पत्नी ने भी कहा था मैं दिखाना चाहती हूं कि मेरा पति मुझे कितना मानता है, पर दिखाने में ही सत्यानाश हो गया। ये आप लोग बड़े प्यार से बात करता हूं, आते हैं लोग मेरे पास अक्सर कहता हूं आप कितना खर्च कर सकते हैं, कोई शादी ब्याह के इतना आप अपने मर्यादा में खर्च करो, कल दुनिया लाड़ू खा के एक दिन वाह वाह करेगी बाकी जिंदगी भर हाय हाय न करना। आप 1 करोड़ खर्च करो लेकिन उधार लेके नहीं, जमीन बेच के नहीं, मकान बेच के नहीं, किसके लिए? आपकी अच्छाई को जो नहीं समझ पाया, पैसे के बल पर खरीदने की कोई जरूरत नहीं, कब तक खरीदोगे, कब तक प्रशंसा लोगे? और यही मेरे प्रिय आत्मन इतना समझो, दिखाने के लिए कभी कुछ मत कर। नए साल में जब स्थिरता आती है तो अपने को समझो, हमारी औकात क्या है, हम क्या है, बुरा न मानिएगा, बड़े प्यार से कह रहा, कुछ और न समझिएगा, चाहे हरिद्वार की बात हो, दिल्ली की बात हो, आपकी बात हो, मेरी बात हो, कभी कोई बात चलती है। एक बार हरिद्वार के संतों ने मुझसे पूछा, स्वामी जी आप पढ़े लिखे हो, महामंडलेश्वर हो, 30-32 हजार साधु आपको मानते हैं, पूछते हैं, अभी हरिद्वार से बड़े बड़े महंत आए थे चंदे से, वो भी हमारे लिए बहुत भाव रखते हैं सब है, तो कहते आपने अहंकार क्यों नहीं? मैंने कहा मैं कितना बड़ा हो जाऊं लेकिन हूं तो भिखारी, आप देते हो तो खाता हूं, भिखारी अहंकार करके अगर जो कपड़ा पहना इसमें अहंकार आएगा तो लोग जो देते वो भी नहीं देंगे, भूखे मरूंगा, तो भूखे न मरूं इसलिए कहता हे अहंकार, ये विद्वता का सिद्धि का रिद्धि का जिस लोगों ने किया है वो राख बन गए, तो मेरे प्यारे संतों मुझे मनीषा न रहने दो, राख न बनाओ, इसलिए अहंकार न पैदा करो। बहुत कहते हैं तुम तो यहाँ भी आते, तो आप लोग जानते कोई समुदाय में कहता ऊपर बैठो, नहीं नहीं महामंडलेश्वर सामने नहीं बैठो। मैंने कहा कल अगर महामंडलेश्वर बन गए तो जबरदस्ती बैठोगे तभी से बैठो, कल आप वहां पर एक बात कर, आप किसी को छोटा क्यों मानते? आज चलो एक डिप्टी कलेक्टर आया और आपने कुर्सी नीचे पहले ही बड़ी दे दो, कल कलेक्टर बन के आए तो उठ के देना पड़ेगा, आप पहले से करो। कई लोग कहते स्वामी जो भी आता आप नीचे बैठाते हो, मैंने कहा आप मुझे पूछना नहीं पड़ता कि आप कलेक्टर हो कि DSP हो कि कमिश्नर हो कि क्या है। अभी एक बात बताऊं, थोड़ी प्रशंसा की, हमारे संदेश बैठे हैं इनका संबंध बहुत अच्छा है, बहुत है, तो आपको देखो मेरे पास चिट्ठी उठी ना लिखाना नहीं तो बड़ा मुश्किल होता, नहीं कहते पढ़ते नहीं। 7 महकमे का IAS अफसर यहाँ 2 दिन रहा, लेकिन यहाँ किसी को 14 आदमी ले गए, किसी को पता ही नहीं चला कि गुजरात कितना बड़ा, वो तो 3-4 पुलिस की गाड़ी आई थी तब पता चला, कहते बड़ा पुलिस की गाड़ी के बाद तो झूठ तो बोलना बताना पड़ा भाई, तो बताते ही 2-4 आए, ये कहता मैं मेरा काम करा दो, मैंने कहा कि अच्छा है अभी उनको विदा तो होने दो, नाम सुनते ही, और मैंने इनसे भी कह दिया कि अपना ये धंधा, ये धंधा करूंगा ना तो ये ईंट सोने की बन जाएगी लेकिन लंका की तरह जल जाएगी। ये ईंट आश्रम किसका बन जाएगा? सोने का। और सोना जो देंगे क्या होगा? अपने स्वाद के लिए देंगे, मेरी सासुता पर नहीं देंगे। तो आप देखिए, अब विचार की बात कीजिए। आए और मैं प्रशंसा नहीं करता, फोन भी किया कैसा लगा, तो आप संदेश पूछे उनके दादा ये सब लोग और भी संतों के पास गए थे, ऐसा नहीं यहाँ एक दिन है तो बड़े प्यार हाथ जोड़ गए। वो कहते हैं कि उनके दादा बहुत अच्छे, वो अफसर हो तो आइए अफसर थे कोई नहीं। वो कहते हैं जिंदगी में हम बहुत संतों के पास गए लेकिन यहाँ की जो वातावरण पवित्रता शुद्धता देखी ये दूसरे संत है। अब ये प्रशंसा किया, ये हकीकत है इसलिए स्वीकार किया, लेकिन ये प्रशंसा सुन करके अहंकार आ गया तो सत्या सत्या ना क्यों चलते? उन लोगों की ओपिनियन कैसी? अभी अभी कहते हर साल आना ही पड़ेगा बिना बुलाए, तो यही आपसे कहा था। आते हैं क्या है? अब आप भी इतने अच्छे बनो कि एक मिनट के लिए कोई मिले बार बार मिलने की इच्छा हो, ऐसा ना हो कि हे भगवान उसको जल्दी याद है। इतना अच्छे बनो, वही मैं कहता हूँ, ये कहता हूँ। तो आज इस नए साल पर ये मेरा परिवार है, इसमें अच्छे अच्छे लोग बैठे हैं, थोड़ी बातचीत में मैंने प्रशंसा की बात की है, मेरी भी बात, मैंने कोई फ्लैटरी और चापलूसी की बात नहीं की, जो हकीकत है। अब सूरज को सूरज नहीं कहूँ, तारा कहूँगा तो लोग मुझे मूर्ख मानेंगे, लेकिन तारा को सूरज कहूँगा तो चापलूसी हो जाए और सूरज को तारा कहूँगा तो गधेड़ा हो जाऊ, क्योंकि जानते ही नहीं। नीम के पेड़ को आम बताऊंगा तो कहते मूर्ख है, लेकिन आम के पेड़ को आम तो कहूँ और आम के पेड़ को नीम कह दिया तो नीम भी नहीं जानता और आप, इसलिए जो हकीकत है उसको स्वीकार करो। तो आज आप सबको आए और कालिदास प्रवचन में बहुत रुचि रखते हैं, उनको देख करके आज का जो प्रवचन है वो कालिदास को देख करके आपको सुनाया नए साल में, बाकी सुनाया आपको। मैंने कहा अर्जुन एक तो है, एक तो सुनेगा, उसके बाद कई हो गए बहुत हो गए। तो सबसे बड़ी बात यह है कि नए साल का तो प्रवचन दिया था, आज भी अभी लाभ पांचम तक नया साल ही है, आप तीन बातें लेकर जाओ। कैसी भी परिस्थिति हो जाए अपने को कमजोर नहीं मानना, प्रबलता और अच्छी बात में समर्पण। और समर्पण मतलब है कि एक बार जब निर्णय ले लिया कल या चाहे कुछ हो जाए, न कृष्ण को छोड़ना है न राम को छोड़ना है न मिशन को, जिसको जो बोलना है बोले, लेकिन हमें तो ये समर्पण करना है। ये नहीं कि हम बैठ गए जम्मू तभी में कोई कहता है तो टिकट देता हूँ जम्मू जेट में बैठ जाना ही, जो है वो ठीक है, मैं जिसके लायक हूँ टिकट है और छोड़ दिया वो हो गया। इसलिए एक चीज रखिए, अपने को कमजोर न मानो। और जो समर्पण है, आते हैं यहाँ अच्छे अच्छे लोग बैठे, उनके लड़के विदेश गए ठीक है, थोड़ी पर मैं जानता हूँ थोड़ी परेशानी होगी, लेकिन जिस भगवान ने भेजा है उसका मैं पट्टा वाला हूँ, मैं भगवान से पूछता हूँ कि क्या कहते थोड़े दिन में होगा, तो मैं कैसे कहूँ भगवान को टेलीफोन किया था नहीं तो रोज परेशान करें, मैं कहता थोड़े और सब का काम होता है, आखिर मेरे ऊपर भी तो कोई है, पट्टा वाला के ऊपर भी तो कोई साहब है, उसको मना लेता हूँ जैसे करा दे। लेकिन आप लोग तो दो दिन में घबरा जाते हो, आप लोग कैसे बताऊँ? एक माला घुमाते एक गुठली लगाते दूसरे दिन का तो फल लगा के, एक माला घुमाते ही कहते फल मिला कि नहीं, कहते बाला जी माला घुमाया अभी तक कुछ मिले ही नहीं, ये होता है। तो आज है स्थिरता, कुछ भी हो जाए कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन अपना जो अच्छा विचार है उसे मत छोड़ो और मन को इतना जो होना हो जाए ऐसा हो जाए। तो समर्पण, समर्पण, स्थिरता, प्रबलता, समय लग सकता है लेकिन आप सफल बनेंगे, सफल बनेंगे, सफल बनेंगे। आप सबको वंदन, और जो कुछ है भोजन वो सब आप लोग स्वीकार करें, बाकी जो क्वेश्चन है क्या टाइम हो गया?
पौने बारह हो गया, पौने बारह हो गया।